नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आईपीएल विनिर्माता एप्पल ने अगले सप्ताह भारत में अपना पहला खुदरा स्टोर खोलने की मंगलवार को घोषणा की। ये दर्शाता है कि एप्पल के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजार का कितना महत्व है। कंपनी मुंबई में आधिकारिक तौर पर अपना पहला स्टोर 18 अप्रैल को और दिल्ली में दूसरा स्टोर 20 अप्रैल को खोलेगी। वर्तमान में कंपनी भारत में अपने उत्पादों को विशिष्ट एप्पल प्रीमियम रीसेलर स्टोर के अलावा रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे बड़े प्रारूप वाली खुदरा श्रृंखलाओं, बहु ब्रांड खुदरा दुकानों और ई कॉमर्स मंच के जरिए बेचती है। कंपनी ने कहा, एप्पल ने भारत में ग्राहकों के लिए दो नए खुदरा स्टोर खोलने की आज घोषणा की। 18 अप्रैल को मुंबई में एप्पल बीकेसी और 20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल साकेत खोला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में भारत का लक्ष्य क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिमों से निपटने को सभी देशों के लिए एक साझा रूपरेखा बनाने का है। दरअसल हाल ही के समय में क्रिप्टो बाजार में बहुत उथल पुथल देखने को मिली है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के धराशायी होने और उसके बाद क्रिप्टो बाजार में बिकवाली तेज होने से क्रिप्टो पारिस्थितिकी को लेकर आशंकाएं गहराने लगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कहा, क्रिप्टो बाजार में भारी उथल पुथल को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी भारत की G20 अध्यक्षता में विचार विमर्श का पूरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी देशों के लिए एक साझा रूपरेखा विकसित करना चाहते हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। सीतारमण ने कहा कि G20 समूह श्रीलंका और घाना जैसे मध्यम और कम आय वाले देशों में कर्ज के दबाव को कम करने के लिए सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का मार्च में टोल संग्रह राजस्व 20.64% बढ़कर 369.9 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा है कि एक साल पहले की समान अवधि में उसका अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों समेत कुल टोल राजस्व 306.6 करोड़ रुपए रहा था। मासिक आधार पर फरवरी 2023 की तुलना में IRB का टोल संग्रह मार्च 2023 में 5.38% बढ़ा है। ये फरवरी में 351 करोड़ रुपए रहा था। राजमार्गों पर टोल बूथ का संचालन करने वाली ये कंपनी राजमार्गों के विकास से भी जुड़ी हुई है। IRB निर्माण परिचालन हस्तांतरण मॉडल पर संचालन करती है। सौंदर्य एवं त्वचा देखभाल संबंधी उत्पाद बनाने वाली घरेलू कंपनी VLCC ने विकास गुप्ता को तत्काल प्रभाव से अपना CEO नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। वो जयंत खोसला की जगह लेंगे। VLCC ने बयान में कहा कि कार्लाइल ने दिसंबर 2022 में घरेलू कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। इससे पहले गुप्ता नायका के EB2B कारोबार सुपरस्टोर के CEO थे। वो 2019-20 के बीच वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले ई कॉमर्स मंच फ्लिपकार्ट के मुख्य ग्राहक एवं विपणन अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने दैनिक इस्तेमाल के उत्पाद बेचने वाली प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में वो 21 साल तक विभिन्न पदों पर रहे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी बिजली उपभोक्ताओं को 2400 घंटे गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और सस्ती बिजली आपूर्ति जरूरी है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने मंगलवार को ये बात कही। सिंह ने इस बात पर बल दिया कि देश की कुल आर्थिक वृद्धि के लिए एक आधुनिक और व्यवहार्य बिजली क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों तथा राज्य की बिजली इकाइयों के साथ समीक्षा, योजना एवं निगरानी बैठक की अध्यक्षता की। सिंह ने कहा कि ज़्यादातर बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली मंत्रालय के विभिन्न पहल, मसलन पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, अतिरिक्त विवेकपूर्ण नियम और विलंबित भुगतान अधिभार नियम 2022 जैसे सुधार उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। भारत की एक ऐसी आकांक्षा है कि विश्व व्यापार संगठन और प्रगतिशील बने तथा भिन्न राय रखने वाले देशों को भी महत्व दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जो देश अलग राय रखते हैं, WTO को उन्हें अपनी बात रखने के पूरे मौके देना चाहिए। सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कहा, मैं चाहती हूं कि WTO और अधिक प्रगतिशील बने, सभी देशों की बात सुने और सभी के प्रति निष्पक्ष रहे। उन्होंने आगे कहा, वर्ष 2014 से 2017 के बीच भारत की वाणिज्य मंत्री रहने के दौरान मैंने WTO के साथ कुछ वक्त बिताया। इससे उन देशों की राय सुनने को अधिक मौका मिला जो कुछ अलग करना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कैथरीन तई के शब्दों को याद करना उपयोगी होगा जो उन्होंने हाल ही में कहे थे, परंपरागत व्यापार के तौर तरीके वास्तव में क्या हैं, बाजार का उदारीकरण सही मायनों में क्या है, शुल्क में कटौती के लिहाज से इसका मतलब क्या होगा। आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया है। करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीत सूचकांक 348 पर था। सामान्य तौर पर आयकर विभाग CII को जून के महीने में अधिसूचित करता है। बीते वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 331 और 2021-22 के लिए 317 था। AMRG एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि आयकर विभाग ने इस वर्ष CII 3 महीने पहले ही अधिसूचित कर दिया। इससे अब करदाता 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत लाभ पर कर की सटीक गणना कर सकेंगे और आवश्यक अग्रिम कर का भुगतान कर सकेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।